ओम शांति। 18 फरवरी 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। चारों समय में से जिस भी समय आप जुड़ना चाहें, जुड़ने के लिए एक ही लिंक है, रोजाना के लिए एक ही लिंक है और वो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपको वो लिंक नहीं मिल रहा है और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो में सामने चलती ही लाइन में नीचे देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है हम सबके हित के लिए तो वो भी आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सा मीठा मीठा बाबा, कैसे मीठे बच्चे, तुम्हारी फर्ज अदाई है, तुम्हारी फर्ज अदाई। फर्ज अदाई क्या होता है कि मेरी जो ड्यूटी है, मेरा जो कार्य है वो मैं पूरा करूं। हमारी ड्यूटी है ये बाबा का बच्चा बनने के कारण, परमात्मा का संतान बनने के कारण क्या ड्यूटी है हमारी?
सबको
बाप का परिचय देना। उसके लिए घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रचकर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। कोई बहाना नहीं बताओ, बाबा बहाना नहीं सुनेगा, सुनाओ नहीं सुनेगा, कहानी नहीं है उसके सुनने की। कोई भी हालत हो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो कि घर घर में बाप का पैगाम दो। कैसे करें, कैसे करें, घर घर पैगाम देने के लिए क्या करें?
शिवरात्रि आ रही
है, क्या करें शिवरात्रि पर?
झंडा लेना।
बाप क्यों अपने घर में झंडा लहराने देगा? भाई वो कहते तो मैं मानता नहीं घर, ये तो कांग्रेस का घर थोड़ा है, सारे जब कांग्रेस का झंडा या बीजेपी का झंडा लगा देंगे। कैसे डाले, ड्यूटी छोड़ दें क्या, काम धंधा ना करे तो क्या चाहता है बाबा? हैं जी,
वो भी काम करना है, भी डालो।
कैसे डाले, पर्चे में छपे रखे डाले कब? डालने का टाइम तो नहीं ना, पर्चे तो छपे रखे, पर्ची छपाना तो आसान काम है, परंतु घर घर पहुंचाना ये तो बड़ा तेरा काम है। ये काम ऐसे 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 उल्टे सीधे काम बाबा क्यों देता है हमें? हाँ जी,
एरोप्लेन से ऊपर से पर्ची फेंक देना ऊपर,
पैसे बर्बाद करने वाली बात है। एरोप्लेन वाला लाख डेढ़ लाख रुपए ले लेगा पर्चे फेंकने के लिए, और वहां से पर्चे फेंकेगा तो वो एक ही घर में जाकर के गिर जाएंगे, एक ही खेत में जाके गिरेंगे, पता नहीं कहाँ गिरेंगे। पहले होता था
अखबार वाले को पैसे दे दो, बात खत्म, हर अखबार में।
अखबार वाले को भी मैं अखबार बांटता रहा हूँ, अखबार वाले को पेपर पर्चे दे दो, आप जो अखबार देखते हैं उनको पता होगा कि एक एक पर्चे एक एक अखबार में पांच पांच चार चार तीन तीन पड़े होते हैं।
इंटरनेट से सबके मैसेज मोबाइल में भेज दो।
किसके किसके मोबाइल में भेजे, कोई ऐसा करने वाला बंदा भी तो चाहिए ना। अब हम कैसे भेजे बताओ, अब बहने कैसे भेजे सबके पास, क्या करें बताओ। सारे हर तरफ से प्रॉब्लम आती है। हम बात, हाँ जी,
ये टाइम में तो भाई जी सबको पता चल गया है कि ब्रह्मा कुमारी ऐसे है बोल के, कहते हैं ईश्वर आया है, ऐसे सबको पता चल गया वाला है, पर वो उनका भरोसा भी नहीं, उतना मानते भी
उतना मानते
भी। टीवी में भी हर जन मालूम है कि शिवानी बहन ब्रह्मा कुमारी का सुना थे, तो कहते भगवान आया है, ऐसे सबको पता हो गया वाला है। वैसे
चलो फिर हमें पर्चे बांटने की जरूरत नहीं है घर घर जाकर के। हरे हाँ जी
बाबा ने कहा है तो करना,
तो करना है मतलब जितना समय हमें मिलता है आधा घंटा एक घंटा पंद्रह मिनट बीस मिनट हम अपना समय वेस्ट करने की बजाय कभी भी पर्चा हम हाथ में लें जरूरी नहीं कि हमें पर्चे सौ बांटने हैं ऐसा भी मेरा जो विचार है नहीं करना चाहिए। हमें पर्चे अपने हाथ में ले ले पचास बीस सौ परंतु निकले कभी किसी घर में कभी किसी घर में फिर वहां रुक जाए हम ये सोच के जाए कि हमने कहीं ना कहीं रुकना है उनको पर्चा पकड़ाना है और उनको बताना है। यदि वो रुकता है कुछ सुनना चाहता है तो थोड़ा रुक करके उसे समझाए। बेशक हम एक दिन में दो जनों से पांच जनों से मिले परंतु हम मिले हम उनको बाबा का संदेश दें। एक नहीं सुनना चाहता दो नहीं सुनना चाहते दस नहीं सुनना चाहते उनको पर्चा दे के आगे चलो परंतु जो सुनना चाहे उसको थोड़ा सुना करके आओ। जितना टाइम हो दुखी नहीं होना है परेशान नहीं होना है और घर से निकलना है ये सोचकर निकलना है कि चलो जैसे हम सोचते हैं ना कि भाई हम एक घंटा जो है ना योग करेंगे योग उसी टाइम योग है। आप जब बाबा के कार्य पर निकल पड़े हो बाप का संदेश देने के लिए निकल पड़े हो बाप आपके साथ जा रहा है तो वो योग है। याद रखिए इस बात को सेवा योग सेवा के साथ योग है कर्म योग है। आप कर्म करते हुए बाबा की श्रीमत पर चल रहे हो ये कर्म योग हो जाएगा। तो इसलिए मतलब भारी नहीं होना है ये याद रखना है। मैंने एक घंटा है तो एक घंटा ताकि मेरे घर के काम खराब ना। आज हम इधर के दस घर देख के आ जाते हैं अगले दिन उस गली के दस घर देख के आ जाते हैं अगले दिन अगली गली के दस घर देख आते हैं। हमने अपने समय को बेस्ट यूज करना है और बाबा का संदेश युक्ति बाबा ने कहा कोई भी हालत मेरे को नहीं बताना मैं बीमार हूं मैं क्या करूं बीमार हूं क्यों क्यों ऐसे करूं वो दर्द तेरे शरीर का है तू अपना उठ काम कर जा कैसे दे के आना ये सोचो। युक्ति तुम्हें रखनी है कैसे देना है मैं भी एक आइडिया दे रहा हूं बाकी आपने अपने अंदर सोचना है कि कब क्या कैसे करना ठीक है कि नहीं। तो हमें मेन मकसद है बाबा की तरफ से कि मुझे कोई भी बताओ नहीं कि ये आपकी ड्यूटी है आपको सत्यु की रजाई चाहिए तो अपने काम को करो नहीं करते तुम्हारी मर्जी मेरा काम था बताना और मैंने बता दिया अब करना है तुम्हारा। बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। प्रश्न तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रहना चाहिए तुम बच्चों को किस एक बात का क्या रहना चाहिए शौक रहना चाहिए कौन सी बात का शौक रहना चाहिए। उत्तर जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं जो भी मुरली में रोजाना नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक। मैं रोज सोचता हूं कि आज ये मुरली को मैं सेव करूंगा परंतु वो मुरली निकल जाती है मैं कितना आगे निकल जाता हूं उस मुरली को सेव नहीं करता कि उसके ऊपर लिख दू कि ये मुरली इस पॉइंट के लिए है। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक होना चाहिए क्योंकि इतनी सब पॉइंट्स याद रहना मुश्किल है। नोट लेकर फिर कोई को समझाना है ऐसे भी नहीं लिखकर फिर कॉपी पड़ी रह जाए लिखकर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट लेने का बहुत शौक रहता जो अच्छी रीति समझते हैं ज्ञान को उन्हें नोट लेने का बहुत शौक रहता है। शौक तो है, टाइम कब से लाए। बाबा कहता मेरे बच्चे नहीं कह सकते कैसे करें, मेरे बच्चे नहीं कह सकते कि टाइम कहां से लाए। टाइम तो यही है, करो। मेरे को बेर को बता रहे हैं तुम्हारे पास टाइम नहीं, 24 घंटे दे रखे हैं तुम्हें। हाँ, बारना नहीं सुनना चाहता, करो जी। लाख जमाने वाले कहे हम बदलेंगे नहीं, हम तेरा दर छोड़ेंगे। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, रूहानी बच्चे ये अक्सर एक बाप ही कह सकते हैं। रूहानी बाप बिगर कभी कोई किसको रूहानी बच्चे नहीं कह सकता। रूहानी बच्चे एक बाप ही कह सकता है, और कोई दुनिया में किसको ताकत नहीं जो कहे रूहानी बच्चे। ठीक बात है, बच्चे जानते हैं सब रूहों का एक ही बाप। बाबा जानते हैं कि सब रूहों का एक ही बाप है। हम सब भाई भाई हैं, गाते भी हैं ब्रदरहुड, या गाते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सब भाई भाई गाते भी हैं। फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी है जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, जो परमात्मा को क्या कह देते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। फादरहुड हो पड़ता है रावण राज्य, पुरानी दुनिया में होता है रावण राज्य का होता है, पुरानी दुनिया में, नई दुनिया में राम राज्य अथवा ईश्वरीय राज्य कहा जाता है। ये समझने की बातें, दो राज्य जरूर है, ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। नई दुनिया जरूर बाप ही रखते होंगे, इस दुनिया में मनुष्य नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते, गोया कुछ नहीं जानते हैं। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, तुम भी कुछ नहीं जानते थे, बेसमझ थे, क्या थे, बेसमझ थे। नई सुख की दुनिया कौन स्थापन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नर्क कैसे बनता है, ये किसी को पता। इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना, इन बातों को तो मनुष्य ही जानेंगे ना। देवताओं के चित्र भी हैं तो जरूर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, इस समय नहीं है। ये है प्रजा का, प्रजा पर राज्य। बाप भारत में ही आते हैं, मनुष्यों को ये पता नहीं कि शिव भारत में आकर क्या करते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। तुमको अब परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का, परिचय देना है त्रिमूर्ति और शिव बाप का। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवताए नमः कहा जाता है। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः, शिव को कहते हैं परमात्माए नमः। तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ति शिव का ही परिचय देना है, ऐसी ऐसी सर्विस करनी है, कोई भी हालत में बाप का परिचय सबको मिले। तो बाप से वर्षा ले ले, पर जहां भी रुकना है, जिसको भी परिचय देना है, परमात्मा का परिचय देना। पहला पहला काम आप यदि परिचय दे रहे हैं, शिवरात्रि का परिचय दे रहे हैं, तो आप उसे परमात्मा का परिचय दे, बस समझ ले। यदि वो परमात्मा का परिचय सुनने के लिए रुक जाता है, आपकी बात को सुनता है, तो समझ लो कि वो बाबा का बच्चा है। यदि वो परमात्मा के बारे में सुनने के लिए तैयार नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी इसको बीज डाल दिया है और फिर फूटेगा, कभी ना कभी तो मुझे बुलाएगा, मैं आ जाऊंगा, फिर वो बुलाएगा, शरीर छोड़ने से पहले वो आपको बुलाएगा, आ जाओ बताओ क्या करूं अब मैं। उसको याद आएगा वो बीके मिले थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कुछ कहा था, उस टाइम मैंने सुना नहीं, अब मेरे को ठीक लग रहा है, बुलाओ। वो उस टाइम इतना दिल से आपको याद करेगा, आपको सूक्ष्म शरीर से उसके पास पहुंचना पड़ेगा और उसको संदेश देना पड़ेगा, क्योंकि जब सुनेगा तब तो देने जाना पड़ेगा ना। यदि लास्ट में आप सेवा नहीं करना चाहते हो तो फिर वक्त देना किसको संदेश, वो आपको जाने नहीं देंगे जब तक आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे। ये हाँ ये जो है ना, आपने उसको अपना परिचय दे दिया, अपनी शक्ल दिखा दी, वो आपको बुलाएगा और उस टाइम इतनी तेज बुलाएगा कि आप सारे काम छोड़ करके भागने के लिए मजबूर होंगे कि मेरा बच्चा दुखी। ये सोच लो, तब जितने बच्चे बनाओगे उतने दुख उठाने पड़ेंगे, क्या रहना है, दुख नहीं कह सकते हम, परंतु परेशानी तो होगी, काम तो छोड़ने पड़ेंगे ना, और वो भी बुढ़ापा आ जाएगा या जवान हो जाएंगे, बुढ़ापा आ जाएगा कि जवान हो जाएंगे, तब जवान हो जाएंगे, शरीर का चक्कर ही नहीं है, वो बुढ़ापा बुढ़ा है तो शरीर बुढ़ा है ना, हम थोड़ा बुढ़े, हम तो आधार मुहूर्त है, हम तो उद्धार मुहूर्त है, हम तो उनका कल्याण करने वाले, शरीर नहीं कर सकते ना, पड़ा रहे शरीर तू यहाँ, मैं जा रहा हूँ, आप दौड़ कर जाएंगे और उनकी सेवा करके आएंगे। हाँ जी, वहां टांग की जरूरत ही नहीं ना, सूक्ष्म शरीर को टांगों की जरूरत ही नहीं, तभी तो मतलब कर सकते हैं ना, मतलब इसलिए इसलिए मैंने यह चर्चा किया कि लास्ट में जाने के भय से सेवा मत रोकना, सेवा करना, वहां आपके शरीर को जाने की जरूरत नहीं होगी, वहां तो आप आत्मा तुरंत भागेंगे सूक्ष्म शरीर लेकर के, कहाँ है मेरे बच्चे, आओ 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 आओ, मैं आपको बताता हूँ क्या करूँ, आप इशारा करेंगे और वो आपका इशारा समझ जाए, उसको विश्वास है आपके ऊपर, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियां जो सच बताती हैं वो कोई और नहीं बताती, मतलब ये उनके दिमाग में बैठता जाएगा और वो उसी को याद करेंगे जिसके जो उनका इष्ट देव होगा, और वो तुरंत उसे भागकर जाना पड़ेगा, अंत में बेहद की सेवा में आपको रहना होगा और खुशी भी होगी, उमंग भी होगा, उत्साह भी होगा और शरीर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि शरीर से इतनी सेवाएं नहीं कर सकते, वाचा से इतनी सेवाएं नहीं कर सकते, परंतु संकल्प से उस समय तुरंत आपकी शक्ल देखते ही उनको आपका साक्षात्कार होगा, वो बाबा को नहीं जानेंगे, वो बाबा को नहीं जानेंगे, वो आपके भगत बच्चे हैं, द्वापर के बाद में आने वाले बच्चे हैं, वो लास्ट में आपको ऐसे खींचेंगे, बस आपका शरीर होता तो आपके टुकड़े टुकड़े कर देते, परंतु आप भी उनके तक पहुंचेंगे। ये बुद्धि में अभी से अपने आप को समझा के रखना है, पर तो आपको खींचेंगे वो जिनको आपने हाथ लगाया होगा, जिनको आपने बाबा का संदेश दिया होगा, अब जिनको दिया नहीं होगा वो आपको क्यों खींचेंगे, ये याद रखना है, वो आपको खींचेंगे नहीं। अंतिम जो सेवा है, जो अंतिम जो फास्ट सेवा है, भक्तों की सेवा है, वो बाबा के बच्चों की सेवा नहीं होगी, वो भक्तों की सेवा होगी जो द्वापर कलयुग में आपके मंदिरों में पूजा करेंगे, वो सिर्फ आपके द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के निमित्त आप बनेंगे, देने वाला बाबा है, परंतु निमित्त आप बनेंगे उन आत्माओं को परम धाम ले जाने। पर इसे सबको मिले तो बाप से वर्षा ले लेंगे। तुम जानते हो हम अभी वर्षा ले रहे हैं, और भी भूतों को वर्षा लेना है, हमारे ऊपर फर्ज अदाई है, ये हमारी ड्यूटी है। फर्ज अदाई मतलब ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपना फर्ज पूरा करें, अदा करें, घर घर में बाप का पैगाम देने की। वास्तव में मैसेंजर एक बाप ही है। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को बाप का परिचय देना है, बाप की नॉलेज देनी है। मुख्य है त्रिमूर्ति शिव, इनका है कोट ऑफ आर्म्स भी, इनका ही कोट ऑफ आर्म्स भी बनाया है। कोट ऑफ आर्म्स समझते हैं, जैसे सेना का। हाँ जी, हाँ, सेना का जो मेडल होता है ना, जो सेना के हर एक जिस प्रकार की सेना होती है उसका एक मेडल लगाया जाता है, जो कंधे पर लगाया जाता है या बैज के रूप में सामने लगाया जाता है, उसको कोट ऑफ आर्म्स बोलते हैं। वो उनके हर लेटर पैड पर होगा, लेटर हेड पर होगा, बाहर ऑफिस में होगा, मतलब वो कोट ऑफ आर्म्स लोगो जिसे हम कहते हैं, हम आज की भाषा में लोगो कहेंगे। हर एक आर्मी का अपना एक लोगो होता है, हर एक स्कूल का अपना एक लोगो होता है। तो इसी प्रकार से हमारा भी लोगो है, त्रिमूर्ति का जो चित्र है वो हमारा लोगो। उसके बाद जो है ना, ये लोगो जो हमारा अब हमारा बना हुआ है, किरणों वाला चित्र, शिव बाबा का चित्र, ये हमारा लोगो है। इसी प्रकार से उस समय जब ये मुरली चली थी उस समय त्रिमूर्ति का चित्र हुआ करता, ठीक है, किरणों वाला चित्र बाद में बना। फिर इसमें भी काफी सारे चेंज आते गए कि कितनी लाइनें होनी चाहिए, कितनी किरणें निकालनी चाहिए। तो मतलब 18 किरणों वाला हमारा चित्र जो है ना पास किया गया है, जो रजिस्टर्ड है हमारा, कि उसकी 18 किरणों वाला, बाकी अभी भी किसी को पता नहीं है तो जितनी भी किरणें निकाल देते। हाँ जी, नहीं भाई, 2500 गुण है 18 किरणें। तो जो चित्र लोगों जो है ना पाठ किया गया, तो उसके बाद जो है ना चित्र लगाते रहो, कौन देखने जाता है। बस हमारा इसमें चक्र भी दिया है, तरखे मिसल, और उसमें फिर लिखा है सत्यमेव जयते। उनका इनका अर्थ तो निकलता नहीं, ये तो संस्कृत अक्षर है, सत्यमेव जयते। अब हिंदी में लिखा हो तो सबको समझ में आ जाए, अब इसको कोई बताता है तो किसी को तो वो समझ में आ जाता है, अच्छा इसका अर्थ ये है, परंतु नहीं तो वो संस्कृत में लिखा है समझ में नहीं आता। अब बात तो है ही तुत, बात तो सच है, वे जो समझाते हैं उससे जिस उससे तुम्हारी विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। सारे विश्व पर बाप कहते हैं मैं सच कहता हूं, तुम इस पढ़ाई से सच सच नारायण बन सकते हो, सच सच नारायण बन सकते हो। वो लोग क्या क्या अर्थ निकालते हैं वे भी उनसे पूछना चाहिए। बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं, जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ। पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती, नदियां सागर से निकली हैं, वो पानी का सागर, उनसे पानी की नदियां निकलती हैं। पानी की नदियां सागर से निकलती है, पहाड़ से निकलती है भाई, पहाड़ से निकलती है ना। ये बाबा क्या कह रहा है, आपका बाबा सागर से निकलते, आपका बाबा
सागर सागर से निकल के सागर में ही मिलती है,
तो पहाड़ से निकलती
है, सागर में मिलती है, पर निकलती ऊपर से निकलती है, नीचे जाकर सागर में मिलते हैं।
हाँ, ये बात ठीक है,
सागर से निकलती है भाई जी, पहाड़ों पे पानी सागर से ही जाता है।
पहाड़ों सागर से पहाड़ों पर कैसे चला जाएगा पानी,
वाटर साइकिल नहीं होता क्या,
वाटर साइकिल
बादल बनकर जाता है भाई जी। अच्छा। बादल बनकर जाता है, बादल कर
सागर का पानी उसके बाद में
भाप बन के जाता है।
ठीक है, मतलब सागर का पानी भाप बन के शुद्ध होकर के हल्का होकर के पहाड़ों पर जाता है, वहाँ बरसता है, फिर वहाँ से वो शुद्ध पानी नदियों के द्वारा वापिस समुद्र में। ठीक है भाई, समझ जाओ। ठीक है, ये ठीक बोल रहे हैं,
बिल्कुल ठीक है।
उनसे पानी की नदियां निकलती, ज्ञान सागर से ज्ञान की नदियां निकलती हैं। तो ज्ञान सागर से हम क्या है, ज्ञान नदियां निकल रही हैं। तो माताओं में अब ज्ञान है, गौ मुख पर जाते हैं, उनके मुख से पानी निकलता है। समझते हैं ये गंगा का जल है। इतने पढ़े लिखे मनुष्य समझते नहीं कि यहां गंगा जल कहां से निकलेगा। शास्त्रों में है कि बाण मारा और गंगा निकल आई। अब ये नहीं मालूम कि कौन सा बाण मारना था, कौन सी गंगा निकलनी थी। बाबा कहते बच्चे आपके ज्ञान रत्न ये ज्ञान के बाण है, जिस पर चलाओगे वो घायल हो जाएगा। घायल होने का मतलब है बाबा का बन जाएगा। तो ये ज्ञान बाण, ज्ञान के रत्न आपने उन पर चलाने, ज्ञान रत्न देने होते हैं, ज्ञान बाण चलाने होते हैं, ताकि वो बाबा के बच्चे बन जाए, उनको ज्ञान मिल जाए, समझ मिल जाए। चाहे आप वो पर्चा घर घर जाके दो, चाहे घर बैठे मनसा सेवा करो, तो चाहे वाचा सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, मेरे को कुछ नहीं पता। बाबा कहते मुझे कुछ नहीं बताओ, बस करो, अपनी फर्ज अदाई करो। जितनी प्रजा आपको चाहिए उतनों को आप संदेश दे के आओ, नहीं चाहिए तो बैठे होगा। ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई। कितना दूर दूर तीर्थों पर जाते हैं, कहते शंकर की जटाओं से गंगा निकल आई, क्योंकि उसने बांध रखी है गंगा अपने जटाओं के अंदर, जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं। रामानुसार कुंभ का मेला भी अच्छी तरह से लग रहा है। कहते जी एक बूंद वहां पर अमृत की गिर गई थी। अरे भाई, एक बूंद अमृत की गिरी, वो अभी तक पड़ी है क्या, वो अभी तक पड़ी है क्या वहां? कौन किसको समझाए? जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ये भी परी मिसल है ना, ये भी परी मिसल है ना। अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है, इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाए हैं, प्रदर्शनी के चित्र बनवाए हैं। त्रिमूर्ति शिव के चित्र में सारी नॉलेज है, सिर्फ उन्होंने त्रिमूर्ति के चित्र में, त्रिमूर्ति के चित्र में नॉलेज देने वाले शिव का चित्र नहीं है। नॉलेज लेने वाले का चित्र है, नॉलेज लेने वाले का चित्र है, पर तो नॉलेज देने वाले का चित्र नहीं है। दुनिया वाले जो बनाते हैं चित्र, वो त्रिमूर्ति का चित्र बनाते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर बना देते हैं, और असली जो शिव बाबा है उनको नॉलेज देने वाला, उसका वहां जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए बाबा ने ये चित्र बनवाया कि मेरे को खड़ा करो ऊपर, उनको बताओ ये है शिव को जो ज्ञान देता है। शंकर अलग है, शिव अलग है। मतलब ये जब आप आजकल के टाइम में आप जिनको भी पर्चा देने जाते हैं, उनको शिव और शंकर का अंतर बता के आ जाओ, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। शिव शंकर का अंतर आपके सामने क्लियर हो, तीन चार बातें पर्चे में अच्छी तरह लिखी हुई हो और उसे सुना दो, यदि सुन सकता है तो सुना क्या हो। ये नहीं कि लिखी हुई है तो आप सोचो कि मैं ज्यादा लोगों को पर्चा दे दूं, ज्यादा लोगों को पर्चा नहीं, ज्यादा लोगों तक परिचय दे दूं। पर्चा तो एक बहाना है किसी से मिलने का, किसी से रुकने का। बस चाहे हम दो को दें, एक को दें, टेंशन नहीं, बस सिर्फ हमने उनको परमात्मा का, शिव और शंकर का अंतर बता के आ जाओ। उनको ये बता दो कि परमात्मा एक है और वो सब जगह हर मंदिर में शिवलिंग होता है, ये बात उनको बता दो। परमात्मा का परिचय दे के आ जाओ, फिर उसकी नींद हराम हो जाएगी, नींद उसको आएगी नहीं, वो आएगा आएगा, चाहे वो आ जाए कल आए परसों आए कभी आए, फालतू बातें बताने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परमात्मा का परिचय दे के आना बस। उसकी जो खलबली है, वो जो पत्थर है आपने मार दिया है उसको, वो घायल हो गया, वो ज्ञान का बाण ऐसा है कि बाबा का वो कभी ना कभी फूटेगा, क्योंकि फूटेगा उसके ड्रामा अनुसार, क्योंकि बीज तो पहले डाला जाता है, कोई चीज जल्दी फूट जाता है तो कोई लेट फूटता है। नॉलेज लेने वाले का चित्र है, अभी तुम त्रिमूर्ति शिव के चित्र पर सम जाते हो, ऊपर है नॉलेज देने वाला ब्रह्मा को, उनसे नॉलेज मिलती है जो फिर फैलाते हैं, और इसको कहा जाता है ईश्वर के धर्म के स्थापना की मशीनरी। ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम बच्चों को अपने सत्य धर्म की पहचान मिली है, तुम जानते हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, तुम कितना खुश होते हो, बाप कहते हैं तुम बच्चों की खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, भगवान तो निराकार शिव है ना कि श्री कृष्ण। बाप बैठ सम जाते हैं, सर्व का सदगति दाता एक है, सदगति सतयुग को कहा जाता है, दुर्गति कलयुग को कहा जाता है, नई दुनिया को नई पुरानी को पुरानी ही कहेंगे। मनुष्य समझते हैं अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए, कितना मूंझ पड़े हैं, सिवाय बाप के इन बातों को कोई समझा नहीं सके। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को राज्य भाग्य दे, बाकी सबको घर ले जाता हूँ, बाकी सबको घर ले जाता हूँ। जो मेरी मत पर चलते हैं वो देवता बन जाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे भी जानते हो, नया कोई क्या समझेगा, नया कोई क्या समझेगा। तुम मालियों को का कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना, तुम मालियों का क्या कर्तव्य है बगीचा लगाकर तैयार करना। बागवान तो डायरेक्शन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नयों से मिलकर ज्ञान देगा, ऐसे नहीं, ये काम मालियों का है। समझो बाबा कलकत्ते में जाए तो बच्चे समझेंगे हम अपने ऑफिसर को फलानी मित्र के को बाबा के पास ले जाए, बाबा कहेंगे वे तो समझेंगे, वे तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्धू के सामने ले आकर बैठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं नए को कभी बाबा के सामने लेकर ना आओ, ये तो तुम मालियों का काम है, ये तो तुम मालियों का काम है, ना कि बागवान का। मालियों का काम क्या है और बागवान का काम क्या है? माली का काम है नर्सरी लगाना, और उसको हाँ उसके बाद में नर्सरी लगा के फिर मेरे पास ले आओ, ये नहीं कि उठा के नर्सरी मेरे सामने लाकर मैं नर्सरी को पालूंगा। मैं बड़ी क्लास का टीचर हूँ, तुम प्राइमरी क्लास के बच्चे हो और प्राइमरी क्लास का चैप्टर उनको पढ़ा के आओ, ये नर्सरी प्राइमरी तुम करा के आओ, मेरे पास लेके आओ, मैं भाषण करूं और वो समझ जाए सारा काम। बाबा के पास तब लेके आओ जब उसको पहली क्लास प्राइमरी क्लास से पूरी हो जाए, उनको तो पढ़ा के लाओ ना, ये तो छोटे टीचर का काम होता है ना, हम असिस्टेंट टीचर हैं, हम कोई बड़े टीचर थोड़ा है, बड़ा टीचर तो शिव बाबा है, समझ गए बात को। प्राइमरी नॉलेज सबको देनी है, मतलब चलते फिरते जो भी मिले वहां प्राइमरी नॉलेज हमको देते रहे। प्रिंसिपल है बड़ी बड़ी क्लास को फाइनल पढ़ाई पढ़ाएगा ना, छोटे छोटे चैप्टर पहली क्लास वाला दूसरी क्लास
वाला। बंद करो किसका माइक चालू है, बंद करो माइक।
बागवान का मालिक का काम है बगीचे को लगाना, बाप तो डायरेक्शन देते हैं ना ऐसे ऐसे करो, इसलिए बाबा कभी नए से मिलते नहीं है, परंतु कहां मेहमान होकर घर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करें, आप हमको क्यों नहीं मिलने देते हो? शंकराचार्य आदि पास कितने जाते हैं? आजकल शंकराचार्य का बड़ा मर्तबा है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। ट्रस्टी लोग गद्दी पर कोई को भी बिठा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी है। बाप खुद कहते हैं, खुद आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता हूं। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लगा दी है। मनुष्य तो इतने जन्म नहीं ले सकते ना। फिर जानवर आदि की भी योनियां मिलाकर 84 लाख योनियां बना दी है। मनुष्य तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं। शास्त्रों में तो सब भक्ति मार्ग की बातें, कलकत्ते में देवियों की बहुत शोभावान सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, सजाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं, ये भी गुडियों की पूजा करने वाले बेबीज ही ठहरे, बिल्कुल इनोसेंट। तुम जानते हो ये नर्क स्वर्ग में तो अथाह सुख थे, अभी भी कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, तो जरूर कोई समय स्वर्ग था, अब नहीं है। नर्क के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा। इन बातों को भी तुम जानते हो, मनुष्य तो ऋण चक भी नहीं जानते, तो नया कोई बाबा के सामने बैठ क्या करेंगे? इसलिए माली चाहिए जो पूरी परवरिश करे। यहाँ तो माली भी ढेर के ढेर चाहिए। मेडिकल कॉलेज में कोई नया जाकर बैठे तो समझेगा कुछ भी नहीं, ये नॉलेज भी है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। इस समय सब है तमो प्रधान आत्माएं, तब तो कह देते हैं आत्मा को परमात्मा। सब में परमात्मा है तो बाप थोड़े ही बैठ ऐसे से माथा मारेगा। ये तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना। तुम जानते हो भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। प्रजापिता ब्रह्मा के तो जरूर बच्चे भी होंगे ना। कोई को इतना भी अक्ल नहीं जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, इनका ब्रह्मा कौन है? अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, उन द्वारा ही ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। कैसे भी हैं ब्रह्मा देवताए नमा। बाप तुम बच्चों को ब्राह्मण बनाए फिर देवता बनाते हैं। जो नई नई पॉइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शौक बच्चों में होना रहना चाहिए। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट लेने का बहुत शौक रहता है। नोट लेना अच्छा है क्योंकि इतनी सब पॉइंट याद करना क्या है मुश्किल। नोट लेकर फिर कोई को समझाना है, ऐसे नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे, नोट लिख लो फिर वो कॉपी पड़ी रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए। नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं तो पुरानी पॉइंट्स को की कॉपियां पड़ी रहती है। स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे पहले दर्जे वाली किताब पड़ी रहती है, जब तुम समझाते हो तो पिछाड़ी में ये समझाओ कि मन मना भाव ब्रह्म बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। मुख्य बात है माँ मेकम याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। भगवान है ज्ञान का सागर, मनुष्य है शास्त्रों का सागर। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते, वे भी शास्त्र सुनाए तो बाकी भगवान और मनुष्य में फर्क क्या रहा? फिर भगवान और मनुष्य में क्या फर्क रहा? बाप कहते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ। ये मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं। बाप भी विष पिलाना तुमको तुमसे छुड़ा देते हैं। बाबा हमें सांप समझ रहे हैं, बता रहे हैं, हम सांप को पकड़कर हमारे अंदर जो जहरी वाला दांत है वो जहर वाले दांत कौन से हैं? काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, मोह विकार, जिससे हम खुद भी दुखी होते हैं औरों को भी दुखी करते हैं, वो हमारे वो वाले दांत तोड़ देता है। कहता है मैं हूँ सपेरा, तुम सांपों को पकड़ कर तुम्हारे जहर के दांत क्या करता हूँ? तोड़ देता हूँ। अब करो क्या करते, मौज करो, आराम से खुश रहो, सबको सुख दो, ना तुम्हारे पास जहर होगा ना किसी को जहर से काटोगे। मनुष्य पतित बने हैं, बाप कहते हैं इनको छोड़ो, फिर भी छोड़ते नहीं। बाप गोरा बनाते हैं फिर भी गिरकर काला मुंह कर लेते हैं, और बाप के बाप आए हैं तुम बच्चों को ज्ञान किताब पर बिठाने, ज्ञान किताब पर बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ज्ञान किताब पर बैठेंगे तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्तर नंबर एक, सदा खुशी रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे पढ़ाते हैं। हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है, पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है, मेहनत करनी है। वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भाव। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त, संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिलता, विश्व के राज्य का वा स्टेट का के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सोवो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो, सदा क्या कर सकते हो? तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे भागना। तो आप क्या करो, मुंह मोड़ो और आगे बढ़ो, ये सब आपके पीछे पीछे आते जाएंगे। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे कोई भी नई इन्वेंशन अंडरग्राउंड जाने से कर सकते हैं, अंडरग्राउंड जाना मतलब एकांतवासी हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, अंडरग्राउंड को कहेंगे अंतर्मुखी हो जाते हैं, और जिसके कारण वो सोचते सोचते नई इन्वेंशन निकालते हैं। वैसे आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाता जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।